संकीर्तन की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, जय श्री गौरांग महाप्रभु की जय, जय श्री प्रभुपाद की जय, जय गौर प्रेमानंद ओम नमो भगवते वासुदेवाय
Sindhu, 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 कंसंट्रेट करना पड़ेगा, आपका शरीर स्वस्थ होना चाहिए एकदम अच्छी तरह से,
और उसी तरह से दान अगर करना हो तो दान करने के लिए कुछ अपने पास पहले होना चाहिए देने के लिए, नहीं तो क्या दोगे, खाली हवा तो नहीं दे सकते हम लोग, है कि नहीं। वैसे ही हमारे को अगर यज्ञ करना है तो यज्ञ के लिए बहुत सारी सामग्री चाहिए हमारे को, तभी यज्ञ संपूर्ण हो सकता है। तो हर चीज के लिए मूर्ति पूजा अगर करनी है तो उसके लिए भी सामग्री होनी चाहिए, है ना, दिया होना चाहिए, अगरबत्ती होनी चाहिए, घंटी होनी चाहिए, बहुत कुछ होना चाहिए। और हम जानते हैं कि अलग अलग युग के अंदर भगवान को प्रसन्न करने के अलग अलग मार्ग थे। मनुष्य जीवन का एकमात्र उद्देश्य है समसिद्धि हरितोषण, भगवान को प्रसन्न करना, ये मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। और इसी उद्देश्य की पूर्ति करने के लिए अलग अलग युगों के अंदर अलग अलग पद्धतियां थी। जैसे लोग सतयुग में क्या करते थे, तपस्या करते थे, घोर तपस्या, कई हजार वर्षों तक लोग तपस्या करके बैठे रहते थे। जैसे आपने विश्वामित्र का सुना होगा, 60,000 साल तक तपस्या की, फिर मेनका ने आके एक घंटी बजाई टंग, तो वो बोलता है कि तूने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टंग 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 टंग, उसका घंटी बज गया वहीं पे। और मेनका की एंट्री हुई और उसकी घंटी बज गई और वो तपस्या भंग हो गई। तो इतना आसान नहीं है, इतना 60,000 साल तक वर्षा तपस्या करने के बाद केवल एक टिंकल एक घंटी से उसके सब हालत खराब हो गए। तो तपस्या इतना आसान नहीं है। अभी जैसे यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं तो हम लोग बैठे बैठे एक घंटे में कई बार पोस्चर चेंज करते रहते हैं, क्योंकि कभी इस पैर पे भार देते हैं, कभी उस पैर पे भार देते हैं, कभी कमर हमारी लचक जाती है, तो क्या क्या हो जाता है हमारे साथ। तो तपस्या इतना आसान नहीं है हमारे लिए। फिर त्रेता युग के अंदर लोग यज्ञ करते थे, तो यज्ञ में क्या होता था, प्योर चंदन की लकड़ी, प्योर घी, प्योर ब्राह्मण, किधर से लेके आएंगे बताओ, इस दुनिया में भी कुछ प्योर बचा ही नहीं है, ना प्योर घी है, ना चंदन की लकड़ी हमारे को मिलती है, और ना ही ऐसे ब्राह्मण मिलते हैं जिसके बोलने पे अग्निदेव प्रकट हो जाए, है कि नहीं। तो इस बार का यज्ञ जो होता है वो तो ऐसे ही, मतलब कभी कभी क्या होता है कि हम लोग जब छोटा मोटा यज्ञ भी करते हैं, हालांकि यज्ञ रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन अगर कभी करना भी रहता है तो यजमान जो होता है वो पंडित जी को बुला के बोलता है कि भाई मेरे को यज्ञ करवाना है। तो पंडित जी क्या करते हैं, बड़ी सी लिस्ट बना के देते हैं सामग्री की, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, तो आधा पसीना तो लिस्ट देख के आ जाता है इतना सारा। तो पंडित को बोलते हैं कि पंडित जी क्या लिस्ट आधा नहीं हो सकता है, तो पंडित बोलते हैं ठीक है सभी चीज आधा आधा लेके आओ, लेकिन मेरा दक्षिणा पूरा देना, क्योंकि पंडित खाली दक्षिणा में इंटरेस्टेड है, वो यज्ञ में इंटरेस्टेड नहीं है। और हम लोग भी कुछ करने के लिए इंटरेस्टेड है, और किसको क्या मालूम यज्ञ के अंदर क्या होता है और क्या मंत्र पढ़े जाते हैं। जैसे अगर मैं बोल दूं ओम जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेयर ऑफ वाटर, जैक केम डाउन, जिल केम टंबलिंग आफ्टर हिम, कुरिया सदा मंगलम स्वाहा, पता नहीं चला क्या हो गया, कौन सा श्लोक बोला। अगर कुछ लोगों को मजा रहा कि मैंने कोई कविता बोल दी इंग्लिश के अंदर, तो ऐसा होता है, लेकिन नहीं कर सकते हम लोग, बहुत डिफिकल्ट है और इतना आसान भी नहीं है, लोगों को समझ में भी नहीं आता। एक बार एक आदमी ग्रह शांति का यज्ञ कर रहा था और अंत्येष्टि के मंत्र पढ़ रहा था। अंत्येष्टि आपको समझ में आता क्या होता है, किसी का श्राद्ध करते हैं ना तब अंत्येष्टि के मंत्र पढ़े जाते हैं, तो वो मंत्र इधर पढ़ रहा था, किसी ने उसको पकड़ा, बोला ये क्या कर रहा है, बोला यार मैं वो दूसरा किताब हाथ में आ गया अभी मैं क्या करूं, लोगों को समझ में थोड़ी आता है क्या श्लोक बोल के जा रहे हैं लोग, आज दुनिया में किसी को श्लोक आता नहीं है एक्चुअली, तो ये तकलीफ है, तो यज्ञ नहीं कर सकते। फिर मूर्ति पूजा बहुत डिफिकल्ट है, मूर्ति पूजा के लिए बड़ा ही एकदम मतलब एक विधि बताई गई है कि भगवान का किस तरह से पूजा करना चाहिए, दिन में 6 बार स्नान करने का, 6 बार अलग से भगवान को भोग लगाने का, 6 बार आरती करने का। वैसा करते करते हमारा दिमाग ही खराब हो जाता है कि क्या इतना सब है कि नहीं, शुद्धिकरण ये वो सब कुछ है नहीं एक्चुअली, और बहुत सारी मुद्राएं रहती है, ये करती है वो करती है, कुछ हमारे को समझ में नहीं आता है। इसलिए कलयुग के अंदर बहुत ही सीधा और बहुत ही सरल उपाय है भगवान के नाम का जप करना। तो ये नारद मुनि ब्रह्मा जी से पूछते हैं कि ब्रह्मा जी कलयुग के अंदर के जीवों का क्या होगा, क्योंकि पहले के जीव जो थे वो लोग के अंदर बहुत सारी शक्ति थी, लेकिन कलयुग के लोगों की क्वालिटी क्या मालूम है, तो श्रीमद् भागवतम में बताइए, अगर आप पढ़ोगे तो हमारा सबका वहां पे डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रायेण अल्पायुष सद्य कलावस्मिन् युगे जना मंदः सुमंद मत्र्यो मंद भाग्या हि उपद्रता। ये हमारा डेफिनेशन है कि कलयुग का जीव कैसा होगा, प्रायेण अल्प आयुष, अल्प आयुष मतलब होता है जिसकी आयु बहुत कम होगी। हम लोग देखते हैं कि कई लोग जो है वो जवानी में मर रहे हैं, है कि नहीं, कई लोगों को हार्ट अटैक हो जाता है, कई लोगों को दूसरी बीमारी हो जाती है, क्या हो जाता है, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, आयु इतना ज्यादा नहीं है। प्रायण अल्पायुष सज्ज कलावस्मिन युगे जना मंदा, कि सब लोग जो है कैसे मंद बुद्धि है, यू नो मंदा सुमंद, बोलते मंद भी नहीं सुमंद, एक्चुअली सुमंद का मतलब होता है कि हमारी बुद्धि बरोबर नहीं है, हमारे लिए कुछ याद नहीं रहता। जैसा अगर मैं पूछूंगा कि आपको परसों आपने सुबह नाश्ते में क्या खाया था, तो शायद याद नहीं आएगा अचानक से, या बोलूंगा तीन दिन पहले या लास्ट फ्राइडे को आपने कौन सा शर्ट पहना था, वो भी हमारे को याद नहीं रहता। कई बार हम लोग भूल जाते हैं बहुत सारी चीज है, क्या नहीं, भूलने की आदत बहुत होती है। सुमंद मते मंद भाग्य, और लोगों का भाग्य भी कैसा है, मंद है। देखो अगर अच्छा भाग्य होता तो हम लोग आज इस परिस्थिति में नहीं होते जिस परिस्थिति में लोगों को काम करना पड़ता है। यहाँ पर 50 डिग्री टेम्परेचर है, ऐसे टेम्परेचर में आके हमारे को काम करना पड़ रहा है, तो ये कोई अच्छा भाग्य नहीं है, है क्या नहीं, मंद भाग्य है। इसके लिए हमारे को इस प्रकार से करना पड़ता है, नहीं तो हम लोग भी राजा बन के घूमते थे, है क्या नहीं। उपद्रता मंद भाग्य, और उपद्रता मतलब ऑलवेज डिस्टर्ब। आप देखोगे कई बार धूप में काम करने वाला आदमी सुखी रहता है, लेकिन एसी में बैठ के टाइम लगाकर काम करने वाला आदमी हमेशा स्ट्रेस में रहता है, एकदम डिस्टर्ब रहता है, हमेशा डिस्टर्ब रहता है, तो ये कलयुग का लक्षण है। तो बोले ऐसे सब जीवों के लिए क्या होगा, तो ब्रह्मा जी ने उनको ये कहा, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम कलव नास्ते व नास्ते व नास्ते गतिरन्यता। कि इस कलयुग के अंदर भगवान को प्रसन्न करने का केवल एक मार्ग है, वह है हरि का नाम, हरि का नाम और हरि का नाम ही, दूसरा कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। अभी तीन बार कहा, तो ये बहुत जरूरी है। तुलसीदास जी कह के गए, कलयुग केवल नाम आधारा सुमिरत सुमिरत नर उतर ही पारा, कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो भगवान का नाम, भगवान का अवतार जो है, भगवान अपने नाम के रूप में अवतीर्ण हुए, और नाम लेना बहुत आसान है। नाम लेने के लिए हमारे को किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, बताओ किसी चीज की आवश्यकता है, क्या होना चाहिए नाम लेने के लिए हमारे पास, कोई बताएगा, भगवान का नाम लेने के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, बस खाली जीवा होना चाहिए, है क्या नहीं। तो जीवा भगवान ने हमारे को दिया है ऑलरेडी फ्री के अंदर, कोई चार्ज तो मांग नहीं रहे हमारे से, और समझो किसी आदमी का जीवा कट भी जाए तो भी आदमी मन में नाम ले सकता है क्या नहीं। कई ऐसे केस हुए हैं जिनका जीवा नहीं था लेकिन उन्होंने भगवान को अटेंड किया, क्योंकि भगवान का नाम कहीं पे भी कैसी भी अवस्था में लिया जा सकता है। इसके लिए बहुत ही सुगम, बहुत ही सस्ता, फ्री, इसमें कोई पैसे भी नहीं लगते। सामग्री लाने के लिए, अगरबत्ती के लिए भी तो कम से कम पैसा लगता है ना, बोलने के लिए तो कुछ पैसा नहीं लगता, इसलिए पूरी दुनिया टबर 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 टबाते रहती है, कुछ भी बोलते रहते हैं, लेकिन हमारी वाणी जो है वो भगवान के लिए प्रयुक्त होनी चाहिए, नहीं तो हमारी जो वाणी, इसीलिए मैत्री मुनि कहते हैं विदुर से, क्या कहते हैं भागवत में, वो कहते हैं तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम कीर्तिं स्वं सद्हरि कर्तुं गिरा अन्याभिदासिते। वो कहते हैं कि हे विदुर, आप मुझसे अनेकानेक प्रश्न कर रहे हो और इस प्रश्न का उत्तर देने की मेरे में कोई योग्यता नहीं है, तथापि लेकिन फिर भी कीर्तयामि, कीर्तयामि मतलब मैं भगवान का कीर्तन करूंगा, भगवान की कथा करूंगा, भगवान के बारे में बताऊंगा। अंग अंग मतलब विदुर का नाम है, तथापि कीर्तयामि अंग यथामति यथाश्रुतम, जितना मेरे को याद है, जितना मैंने सुना है अपने गुरुजनों से, वो तुम्हें बताने का प्रयास करूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरी ये जो जिह्वा है ये वैश्या का रूप धारण कर लेगी और कुछ भी उटपटान बोलेगी। तो अच्छा है उटपटान बोलने से कि मैं भगवान का नाम लूं, मैं भगवान के बारे में कुछ बोलूं। तो इसके लिए जिह्वा जो है हमारे को भगवान के लिए प्रयुक्त करनी चाहिए। और एक मैं सुबह कथा बता रहा था कि ये हरि का नाम लेना कितना आसान है। जैसे एक बार, ये सच्ची घटना है, कि बद्रीनाथ में अगर आप जाओ देवप्रयाग में, तो बहुत ऊंचा है वो, और जब बस ऊंचे उस पर्वत पे जाती है और वहां से अगर आप धरती को देखो तो बहुत नीचे खाई के रूप में दिखाई देता है और एकदम चक्कर आने लगता है, कई लोगों के पेट में गुदगुदी होने लगती है इतना नीचे देख के, ऐसी हालत हो जाती है। और वो जो रास्ता है, वो रास्ता भी भगवान की दया से इतना अच्छा नहीं है, एकदम कच्चा है, और जो बसें भी चलती है वो यहाँ के जैसी फाइव स्टार वाली बस नहीं चलती है, तो एकदम खगड़ी हुई बस और खगड़ा हुआ रास्ता, और उसके अंदर वो ड्राइवर निकल जाता रहता है, और कई लोग जो बस ड्राइवर के पीछे बैठे रहते हैं पहली दूसरी सीट पे, उनका ध्यान ड्राइवर पर रहता है कि क्या कर गया ड्राइवर, कैसे बस चला रहा है, और वो अपना मस्ती में बस चलाते रहता है, और बस चलाते चलाते कभी कभी अगर थोड़ा सा इधर से उधर हो गया तो नजर हटी, दुर्घटना घटी सीधा
खाई के अंदर आराम से एकदम आदमी जाएगा और सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। तो बड़ा डर लगता है वहां पे। तो एक बार क्या हुआ, एक ड्राइवर साथ चला रहा था बस, और एक बस में पीछे बीच की सीट पे एक ध्यानी और एक भक्त दोनों जन बैठे थे, और वो दोनों आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो ध्यानी वो ध्यान के बारे में बता रहा था, भक्त उसको हरे कृष्ण के बारे में बता रहा था, ऐसा उनका चर्चा चल रहा था। और अचानक बस चलते चलते थोड़ा सा स्टीयरिंग हिल गया ड्राइवर का, और थोड़ा बस खिसक गया। तो जैसे ही हिला तो एकदम वो बस ऐसा 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 होने लगा, और सभी लोग घबरा गए, कह रहे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है बस, कि मतलब पूरे सबके सबका दिल अपने हाथ में आ गया कि अभी मरने वाले हैं वैसे ऐसा करके। तो सबकी जब ऐसी हालत हुई, तो ये जो भक्त था उसने क्या किया, नेचुरली जोर से चिल्लाया,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
तभी अचानक क्या हुआ, भगवान की दया से वो जो बस अनकंट्रोल था वो कैसे तो कैसे ड्राइवर ने उसको वापस सड़क पे ले आया, कंट्रोल में हो गया, और धीरे धीरे बस आगे जाने लगी। तो सभी लोगों की जान में जान आई, और कुछ लोगों ने वो भक्त को धन्यवाद दिया कि भैया तूने महामंत्र बोला कम से कम, चलो ये हो गया करके। तो ये हुआ। फिर बाद में भक्त ने अपने पड़ोसी से पूछा, ध्यानी से बोला, अच्छा एक बात बताओ, अभी जब बस गिरने वाली थी खाई में, तो मैंने तो हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, तुम क्या कर रहे थे? तो ध्यानी से फिर रहा नहीं गया, और उसने सोचा कि ऐसे टाइम पे मैं कैसे झूठ बोलूं। फिर उसने बोला कि नहीं, मेरा तो ध्यान में कर रहा था, वो ध्यान ही टूट गया, क्योंकि इतना डिस्टर्बेंस के अंदर ध्यान कैसे करूं मैं, है कि नहीं, ध्यान किधर से रहेगा, मेरा ध्यान तो उधर था मरने के अंदर। तो बोला इसके लिए मैं तुम्हारा हरे कृष्ण महामंत्र सुना, तो अभी मैं ये चीज को मानता हूं कि ध्यान से अच्छा भगवान का नाम है। तो बाकी जो है वो दान यज्ञ तप ये वो सब बहुत डिफिकल्ट है करना। जैसे क्या होता है कि वो यजमान को जब यज्ञ करने के लिए बोलता है और बैठ जाता है, और यज्ञ में से जब धुआं निकलता है और आग में जाता है, तभी हालत खराब हो जाती है यजमान की। वो पंडित को बोलता है, भैया जल्दी इसको जरा फटाफट जरा घुमाओ और फिर भी बट लेके खत्म करो उसको, क्योंकि इतना धुआं आग में जा रहा है, आदत नहीं है, बड़ा कष्ट होता है कि नहीं, देने के लिए कितना कष्ट होता है। तो मैंने कई बार ये बात कही कि जब देने की बात आती है तो आदमी के दिल से निकलता ही नहीं है, जेब से निकलता ही नहीं है। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भारत में ऐसा देखा है, इवन बांग्लादेश में भी शायद होगा, नेपाल में भी होगा, कि जब लोग मंदिर में जाते हैं तो अपना पर्स निकालते हैं और उसमें सबसे छोटा चवन्नी ढूंढते हैं और फिर उसको लेके भगवान के अंदर डालते हैं। और कई कई लोग तो ऐसा भगवान की मूर्ति में डालते हैं, ऐसा बताने के लिए, देखो मैं चवन्नी आया और तुमको दे रहा हूँ, ऐसा है कि नहीं? तो ऐसा है नहीं होना चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि जो महिला लोग होती है वो लोग के पास फटी हुई नोट आ जाती है कभी कभी, वो फटी हुई नोट को लेके वो जाती है पहले किराना की दुकान पे, किराना वाला नहीं लेता, बोला फटा हुआ नोट नहीं चलता है, तो सोचते चलो मार्केट में जाके चला दूंगी, सब्जी मंडी में चला दूंगी, सब्जी मंडी में जाती है वहां पे भी वो नोट नहीं चलती है, और फिर आगे और नोट मतलब कहीं पे राशन की दुकान में कहीं पे भी नहीं चलती है। तो क्या सोचते है, अभी मैं मंदिर जाऊंगी और मंदिर के अंदर वो कभी वो पैसा डाल दूंगी। तो कभी मंदिर की जब पेटी खुलती है तो देखना चाहिए, हमको पता चलता है कैसे बड़े बड़े दानी लोग हैं। अरे दानी तो वो हुए थे राजा शिवी हरिश्चंद्र, जिन्होंने क्या क्या दान दिया था, है ना। लेकिन ऐसे लोग रहते हैं, कभी कभी लोगों के पास गाड़ी रहती है और वो पूरा गाड़ी एकदम हजारों लाखों किलोमीटर जब चल जाती है और पूरा घस जाती है और धक्का मार मार के जब आगे नहीं चलती है गाड़ी, तो क्या सोचते हैं चलो इस्कॉन को दे देंगे, संकीर्तन वैन के रूप में काम करेगा। तो ऐसा लोग सोचते हैं, तो दान होता नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जब जो है बहुत आसान है, संकीर्तन बहुत आसान है, भागवत सुनना बहुत आसान है। देखो सुसुखम कर्तम अवय, भगवान बोलते हैं कि ये ज्ञान ऐसा है तुम आके जस्ट बैठो और सुनो, तुमको कुछ करना भी नहीं है, जब करने में तो कम से कम मुंह चलाना पड़ता है, हरे कृष्ण हरे, डिफिकल्ट होता है, लेकिन सुनने के लिए क्या प्रॉब्लम है। एक आदमी बेचारा मेहनत करके बोल रहा है, सब लोग सुन रहे हैं आराम से, है कि नहीं? सुनने में तो कोई तकलीफ होता नहीं है, राइट? वो बेचारा नोट्स बना के प्रिपेयर करके लाया है, लेकिन अपने को तो बैठ के सुनने का खाली क्या प्रॉब्लम है कि नहीं? इसलिए बार बार सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित किया, सुनो आराम से सुनो, सुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइफ के अंदर। और कभी कभी क्या होता है, हमारा जो सिचुएशन ऐसा है कि हमको भगवान का नाम सुनते सुनते नींद आ जाती है, झपकी लग जाती है, तो भी भगवान उसका हमको क्रेडिट देते हैं। भगवान बोलते हैं अच्छा सोया तो सोया, इधर आके सोया, घर पे नहीं सोया, कम से कम इधर आके सोया, इतना क्रेडिट उसको दे दो, चलो इतना तो तकलीफ उठाया कि इधर आके सोया है, है ना। तो इसके लिए अगर भागवत में आके अगर हम लोग सो भी जाते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। है कि नहीं। जैसे हमारे सार्वभौम प्रभु मजाक में बोलते हैं कि हमारे यहाँ पर दो मंत्र है, एक को सुषुप्त मंत्र बोलते हैं और एक को जागृत मंत्र बोलते हैं। सुषुप्त मतलब वो जिसको चैंट करने से नींद आती है, और जागृत मतलब जिसको चैंट करने से नींद उड़ जाती है। तो सुषुप्त मंत्र कौन सा है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नींद आ गया पूरा। तो पूरा कथा जब समाप्त हो जाता है और एक भक्त जोर से चिल्लाता है महाप्रसादे गोविंदे, सबका नींद उड़ जाता है। चलो अभी तो प्रसाद कुछ लगाना है, सारा सब प्रॉब्लम खत्म लाइफ का। और इतना अच्छा नींद आता है, एक बार एक भक्त आके हमको बोलने लगा कि प्रभु जी जब से मैंने इस्कॉन ज्वाइन किया है और सुबह का भागवत क्लास में आके मैं बैठता हूँ, इतना अच्छा नींद आता है, बताओ पूछो मैं। कहने लगा यार भागवत सुनने ये नहीं है। तो ठीक है एटलीस्ट इधर आके बैठ। फिर धीरे 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 उसका हृदय साफ हुआ और आज जाके बड़ा भक्त बन गया वो। तानी कैसे भी आके हमको सुनना चाहिए। तो कई बार क्या होता है, भक्त लोग आते हैं और हमारे हाथ में एक माला दे देते हैं, बोलते ये लो माला और माला माल बन जाओ। एक हाथ में माला थमा देते हैं, बोलते हरे कृष्ण महामंत्र लो और माला माल बन जाओ। तो भाई साहब पहले तो बड़ा मजा आता है, जमा करता है, फिर थोड़ा जैसे सीनियर होता है तो वो जो फीडबैक का भार रहता है वो थोड़ा ज्यादा लगने लगता है। पहले 50 ग्राम था, अभी 100 ग्राम हो गया, 200, अभी 1 किलो जैसा लगता है। वो उठाने के लिए भी तकलीफ होता है, सोचता है तुम साला माला पार कर बात कर रहा था, हम तो कंगाल हो गया ऐसा। तो कभी कभी क्या होता है कि जब इनिशियली हम लोग आता है भक्ति में तो बहुत उत्साह होता है, जब कीर्तन होता है तो ऐसा टांग ऊपर मार के एकदम ऐसा मन लगता है सीलिंग तक मैं जंप मारूं, और थोड़ा टाइम हो जाता है उसके बाद कोई दूसरा भक्त आके पीछे से हाथ ऊपर करता है, तो प्रभु जी हाथ तो उठो, बड़ा मुश्किल से हाथ ऊपर जाता है हमारा, है कि नहीं? ऐसा होता है क्योंकि हमको एक्चुअली जप के अंदर इंटरेस्ट आता नहीं है इतना। तो बोलने के लिए हम लोग सब बोलते हैं अरे बहुत हरि नाम लो, यही है वही है ऐसा करके, लेकिन सच में जब आदमी जप करने बैठता है तो हरि नाम के अंदर इतना रस नहीं आता है इसको, बहुत डिफिकल्ट होता है। कीर्तन में मजा आता है यस, क्यों? क्योंकि उसमें भी मेरे को कुछ करना नहीं रहता है, कोई म्यूजिक बजा रहा है, कोई हारमोनियम बजा रहा है, हम लोग ताली मार के थोड़ा बहुत गा रहा है और वो भी कोरस में, लेकिन जब जप करना पड़ता है तब हमारा दिमाग घूमने लगता है, और जब हम लोग जप माला उठाते हैं तभी दिमाग फटाफट घूमता है एकदम, है क्या नहीं? कितना लोगों को ऐसा होता है बताओ? सब लोग। तो जो लोग हाथ नहीं उठाया मतलब वो लोग के साथ भी होता है, क्योंकि हम लोग है ना एब्सेंट माइंडेड लोग है, हमारा माइंड काम नहीं करता है, और जब तक एब्सेंट माइंडेड है हम लोग सेंट नहीं बन सकते। अगर संत बनना है तो एब्सेंट माइंड को हटाना पड़ेगा, तभी हम लोग जाकर संत बनेंगे। और क्या मालूम है, ऐसा बताते हैं कि जो बंदा यू नो जप नहीं करता है, ठीक है, जो जप नहीं करता बंदा उसके गले में माया का फंदा, माया सीधा अपना फंदा डाल देती है और उस पर रगड़ के लेके जाती है। एक्चुअली इसके लिए हमको जप करना चाहिए और आगे आगे बढ़ना चाहिए, कैसे में कैसे तो करके, क्योंकि हरिनाम की महिमा बहुत है। जैसे मैं बता रहा था कि समुन्द्र की कुछ बूंदे खाली हम लोग बोल सकते हैं, बाकी हरिनाम के बारे में बताना इवन भगवान को भी नहीं मालूम है। भगवान भी कृष्ण सोचते हैं कि यार मेरा जो इंपॉर्टेंस है मेरे को खुद को नहीं मालूम है कितना कुछ है करके, सिर्फ राधा रानी को मालूम है, भगवान भी खुद अपने बारे में नहीं जानते। तो इसके लिए क्या होता है कि कभी कभी हम लोग जो भक्ति करते हैं तो अपनी खुशी के लिए करते हैं, है कि नहीं? हम लोग सब लोग खुशी के पीछे पागल है, सबको हैप्पीनेस चाहिए, खुशी चाहिए, लेकिन हमको जब किसके लिए करना है? हमारी खुशी के लिए। जब हमारी खुशी के लिए करना है? नहीं, हमको भगवान की खुशी के लिए करना है। तो जब हम जब हमारी खुशी के लिए करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? खुद खुशी, सुसाइड, खुद खुशी। तो हमको किसकी खुशी के लिए करना है? भगवान की खुशी के लिए, है कि नहीं? तो भगवान का की ओर आकर्षण हमारा बढ़ना चाहिए, और आकर्षण नहीं बढ़ेगा तो वो प्रॉब्लम होगा। और आकर्षण बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? बार बार सुनना पड़ेगा, बार बार सुनना पड़ेगा। जितनी बार ज्यादा सुनोगे 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 सुनोगे, जैसे कोई भी हीरो हीरोइन के बारे में हम लोग जितना ज्यादा सुनते हैं उतना ज्यादा आकर्षण बढ़ते जाता है, और फिर उसको देखने की लालसा होती है। रुक्मणी ने कृष्ण के बारे में बस सुना था, निरंतर निरंतर सुन सुन के उसको कृष्ण से प्रेम हो गया। तो इसके लिए जो हमारे इंद्रिय है कान ना, ये बहुत पावरफुल है। इसीलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बोला, डोंट ट्राई टू सी कृष्ण, ओके, और भगवान को आप देखना है तो अपने कानों के माध्यम से देखो, है कि नहीं? वो कहते हैं कि मैं फिर से दोहराता हूं, आप कान खोल दीजिए ताकि स्पष्ट रूप से देख सके। भगवान का खाली दर्शन करने पे हमको भगवान समझ में नहीं आएंगे, भगवान को सुनने पे हमारे को समझ में आएंगे। यानी भाई इस हरिनाम की बहुत महिमा है। केवल मैं एक छोटा सा एक एपिसोड आपके सामने रखना चाहता हूँ जो कि चैतन्य चरितामृत में आता है, और हरिदास ठाकुर और श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच में ये वार्तालाप हो रहा है, तो इसको बड़े ध्यान से सुनिए। आप लोग रेडी है? नमस्कार। तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्री चैतन्य चरितामृत में वर्णन करते हुए ये कहते हैं, चैतन्य लीला गंभीर कोटि समुद्र होते, की लागी की कोरे के हो ना पारे बुझीते। तो बोले चैतन्य भगवान की जो लीला है ये बहुत गंभीर है और कोटि कोटि समुद्र के समान है, उसमें से मैं क्या बताऊं क्या नहीं बताऊं कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को, और उसकी केवल एक या दो बूंद ही मैं आपके सामने प्रसारित कर सकता हूं। तो वे आगे वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए गए। एक दिन प्रभु हरिदास मिलीला, ताहा गोष्ठी करी ताहारे पूछीला। बोले एक बार हरिदास ठाकुर के पास श्री चैतन्य महाप्रभु गए और उनके साथ गोष्ठी वार्तालाप करके और उनसे उन्होंने पूछा, क्या पूछा ध्यान से सुनिएगा। तो कहते हैं, हरिदास कली काले यावन अपार। बोले कि हे हरिदास, इस कलियुग के अंदर बहुत सारे यवन लोग हैं, बहुत सारे यवन और म्लेच्छ लोग हैं। हरिदास कली काले यवन अपार, गो ब्राह्मण हिंसा करी महादुराचार। गो ब्राह्मण हिंसा करी, वो लोग क्या करते हैं कि गो और ब्राह्मण इनकी हिंसा करते हैं, गाय को मारते हैं, गाय को काटते हैं, गाय को खाते हैं, ऐसे लोग कौन है, महादुराचारी लोग है इस कलयुग के अंदर। तो आप अपनी नजर उठाकर जरा देखिएगा, बाहर निकलने के बाद आपको हर कोई व्यक्ति ऐसे ही दिखाई देगा जो कौन है, जो मांस खाने वाला मांसाहारी लोग है और बहुत दुराचारी लोग है। और प्रभुपाद जी इस परफेक्ट में बोलते हैं एक्चुअली कि यहाँ से हमको समझ में आता है कि यवन का मतलब केवल यहाँ पर कुछ लोग रहने वाले वो लोग नहीं, वह व्यक्ति जो कि ब्राह्मण और गाय के खिलाफ है, ब्राह्मणिकल कल्चर के, और जो गाय को मार के खाता है वो सब यवन लोग है, और ऐसे यवन लोग जो है बहुत दुराचारी है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु उनके लिए भी सोच रहे हैं, सोचो भक्त के लिए तो सोचते हैं लेकिन उनके लिए क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि इतने सारे यवन लोग हैं और सब महान दुराचारी लोग हैं, ऐसे लोगों के का क्या होगा। आगे वो पूछते हैं कि यह सब बार कौन मत हो पे निस्तार, ताहर हेतु ना देखिया ये दुख अपार। बोले मेरे को इतना दुख हो रहा है कि इन लोग का क्या होगा। अभी सोचो ये गो ब्राह्मण जिनको मारने वाले लोग है, इनके साथ हम लोग का रोज का उठना बैठना है कि नहीं। तो जैसे मैं कह रहा था ना मंद भाग्य, तो ये भी एक मंद भाग्य है हमारा कि हम लोग किसके साथ उठ बैठ रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ। इसलिए रूप गोस्वामी श्री चैतन्य महाप्रभु के सामने जब गए थे तो अपने मुंह में तिनका लेके उनके पैरों में गिर गए और वो कह रहे थे कि म्लेच्छ से भी म्लेच्छ कर भी म्लेच्छ करे काम, गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम। कि गो ब्राह्मण द्रोही के साथ हम लोग रोज उठते बैठते हैं, रोज उनका दिया हुआ खाते हैं, कमाई उनसे हम लोग कर रहे हैं, उनकी सेवा हम लोग कर रहे हैं, हमारे से पापी कौन होगा। देखो आप लोगों को जगह और मदाई की स्टोरी मालूम है, राइट, मालूम है ना, बहुत पापी लोग थे वो लोग, इतने पापी थे कि नित्यानंद प्रभु उनका उद्धार करने के लिए गए थे, लेकिन रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी क्या कहते हैं कि जगाई मदाई हमारे से अच्छे थे। क्यों अच्छे थे, वो उन्होंने इतना सारा पाप किया था, उन्होंने मतलब देश टू रेप विमन, देश टू किल, दारू पीते थे और कितना कुछ करते थे, किसी के घर में आग लगा देते थे, इतना सब कुछ तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर भी रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी उनको क्या कहते हैं कि जगाई मधारी होते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। बोले हम दोनों जन बहुत महापापी है, जगाई और मधाई से भी पापी है। क्यों, क्योंकि गो ब्राह्मण द्रोही संगे हमारा संगम। अरे ऐसे लोगों के साथ हम लोग उठते बैठते हैं, इससे हमारा दुर्भाग्य और ज्यादा क्या होगा। तो सोचो हमारा भी ये बहुत दुर्भाग्य है, लेकिन कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की असीम अनुकंपावश और उनके सर्वेंट्स की असीम अनुकंपावश हमको यहाँ पर मुसफ्फा और अबू धाबी में बैठ के भी भगवान का कीर्तन करने का, भगवान की कथा सुनने का इतना महा लाभ प्राप्त हो रहा है, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। इसलिए हमको हमेशा ये
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये श्रील प्रभुपाद जी की असीम अनुकंपा है हमारे पे कि हम लोग को किसी प्रकार से किसी के द्वारा एटलीस्ट हम लोग भक्ति के लिए आए हैं। तो इसके लिए ये जो मनुष्य जीवन है ये बहुत ही दुर्लभ है और इसका किसी न किसी प्रकार से हमारे को ठीक करना है। नरोत्तम दास ठाकुर क्या कहते हैं, हरि हरि विफल जन्म गुनाइनु मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्णा ना भजिया जानिया सुनिया विष खाइनु जानिया सुनिया विष खाइनु। पहले मनुष्य का शरीर मिला मेरे को और मैंने राधा कृष्ण का भजन नहीं किया और जानबूझ के मैंने विष खा लिया। लेकिन हमारे पास सौभाग्य क्या है तो वो कहते हैं गोलोकेर प्रेमा धन हरि नाम संकीर्तन जुड़के ना कोई उपाय। तो कहते हैं कि ये जो है गोलोकेर प्रेम धन गोलोक से इंपोर्ट किया हुआ चीज है और ये मैं आपको लाके देता हूं। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं इहा सबर कौन मते होई बे निस्तार तहार हेतु ना देखिए ए दुख अपार। बहुत दुख हो रहा है कि इन लोग का उद्धार कैसे होगा, ये पापी ये पतित ये गिरे हुए ये अधम नराधम यवन लोग जो है मलेच्छ लोग जो है इनका उद्धार कैसे होगा। तो हरिदास ठाकुर भगवान के हृदय को समझ के और उनसे कहते हैं हरिदास कहे प्रभु चिंता न करी हो यवनेर संसार देखी दुख ना वही हो। तो बोलते हैं हे प्रभु आप चिंता क्यों करते हो, आप ये यमन लोग का ऐसा संसार इन लोगों की ये जो दशा देख के आप कुछ दुख मत करो क्यों। तो उसका जवाब आगे देते हैं हरिदास ठाकुर ने क्या कहा कि हे प्रभु आप चिंता मत करो और फिर वो आगे कहते हैं यवन सकल मुक्ति है पे अनायासे। तो बोले कि ये जितने भी यमन लोग है इन सबकी मुक्ति निश्चित है, दे विल ऑल गेट लिबरेटेड। समझ में आपको हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, ये सब लोगों की मुक्ति निश्चित है। क्यों? तो वे कहते हैं अनायास आराम से निश्चित है, एकाएक हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इनको। तो कहते हैं यवन सकल मुक्ति होइबे अनायासे हराम हराम बोली कहे नामा भासे। तो बोले क्यों, क्योंकि वो लोग एक चीज बोल रहे हैं हराम हराम हराम। तो हराम में क्या लगा है राम। तो कहते हराम हराम बोले कहे नामा भासे। तो चाहे कोई हराम हराम बोले या दिराम दिराम बोले अगर दिराम दिराम भी बोलता रहेगा तो उसकी मुक्ति निश्चित है क्योंकि उसमें राम लगा हुआ है। तो ये सब लोग चाहे हराम बोले या दिराम बोले राम है उसके अंदर, है कि नहीं। किसी भी किसी प्रकार से भगवान राम का अगर नाम ले लिया तो बस मुक्ति निश्चित है एक्चुअली। तो वो कहते हैं आगे कि जो महान भक्त होता है भगवान का एकदम उच्च कोटि का वो क्या कहता है, वो इस प्रकार से चिल्लाता है कि हे मेरे प्रभु रामचंद्र जी हे मेरे प्रभु रामचंद्र जी महाप्रेम में भक्त को है हराम हराम यवनेर भाग्य देखो ले से नाम। अरे यवन लोग का भाग्य तो देखो कि जो महाभागवत लोग होता है वो लोग हाराम हाराम बोलते हैं और ये लोग की भी हाराम हाराम बोल रहा है तो इनका तो मुक्ति निश्चित है, है कि नहीं। तो ये हराम और दिराम बोलने वाले सबका उद्धार होने वाला है, आप चिंता मत करो। तो आगे कहते हैं यद्यपि अन्य संकेत अन्य हो नामा भाषे तथापि ना मेरे तेज ना हो विनाश। तो कहते हैं कि आप छोड़ो नामा भास कोई संकेत से भी बोलता है तो भी उसका उद्धार हो जाएगा। और वे कथा बताते हैं कि एक जंगल में से एक आदमी जा रहा था और एक जंगली सुअर ने उसको सिंह मार दिया और वहीं वो मर गया और मरते मरते चिल्लाया हराम हराम और भगवान ने उसको वैकुंठ दे दिया। तो इस प्रकार से आगे कहते हैं कि सिर्फ नामाभास सांकेत। तो जैसे श्रीमद् भागवतम में एक श्लोक आता है कि सांकेत्यम पारिहास्यम हेलनम्बा, कि कोई अगर संकेत करके भी कोई बुलाता है ये हरे कृष्णा वाला है, खाली इतना भी बोल दिया उसका उद्धार हो जाएगा। सांकेत्यम
पारिहास्यम, पारिहास्यम मतलब मजाक उड़ाना। तो कई लोग हमारे मजाक उड़ते टकलू टकलू है, चाणक्य है, पंडित है, हरे कृष्णा, ऐसा कुछ भी बोलेगा तो ऐसा हो जाएगा। एक बार जब वो बाबरी मस्जिद का उसका जब मैटर चल रहा था तो हमारे एक राधेश्याम प्रभु दोस्त है, क्यों राधेश्याम प्रभु वो एक कंपनी में काम करते थे, डिवोटी थे, तो एक लड़का उनसे मजाक करता था और एक बार उनको जब भी मिलता था बोलता था कि कसम राम की खाते हैं हम मंदिर ही बनाएंगे, ऐसा करके हमेशा बोलता था। एक दिन ऑफिस गए तो उन्होंने बोला कि जय श्री राम, तो उनको लगा ये राम का भक्त है तो वो प्रचार करने के लिए चले गए, बोला मेरे को लगता है तुम राम का भक्त है, तुमको भी राम के बारे में बताना है। बोला नहीं 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 मेरे को कुछ सुनना नहीं है, बोला लेकिन मेरे को बताना है। वो ऐसा उसको प्रीचिंग किया कि आज वो राधा गोपीनाथ मंदिर में बनकर सुदामा दास ब्रह्मचारी आज हरिनाम पे इतना बड़ा बड़ा सेमिनार दे रहा है सब जगह पे घूमते घूमते आचार्य के जैसे, और रोज दिन का 64 राउंड चैंट करते हैं प्रभु जी। इधर आए थे आपने शायद देखा रहेगा हमारे रथ यात्रा में 2012 में, रोज 64 माला जप करते हैं। और कई लोगों को समझ में नहीं आता 64 माला करता कैसे, तो 16 माला मंगल आरती के पहले, 16 माला मंगल आरती के बाद, 16 माला जब जप का समय होता है तब, और पूरे दिन के अंदर और 16, ऐसा करके 64 खत्म कर देता है। सोचो, तो ऐसा एक मजाक किया उन्होंने और वो बाद में हमको बोल रहे थे कि वो मजाक मेरे को बहुत भारी पड़ा जय श्री राम बोलना तो ऐसा मजाक में भी अगर कोई भगवान का नाम ले लिया तो उसका उठाव हो जाता है। सांकेतिम पारिहासिम हेलनम वा, हेलनम मतलब होता है डांट के, और किसी ने किसी को डांट दिया बहुत जोर से, ऐसा अरे ऐसा भी होगा हरे कृष्णा बोल दिया तो उसका उद्धार हो जाएगा। तो हरिदास ठाकुर बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करो प्रभु, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनका उद्धार आप कर रहे हो। और वो आगे कहते हैं कि नामाभास्य मुक्ति होए सर्व शास्त्र देखी, कि मैंने सारे शास्त्रों का अध्ययन किया है और केवल नामाभास्य मतलब नाम लेना तो अलग बात है, नामाभास मतलब क्या होता है, जैसे सूर्य जब उदय होता है तो सूर्य हमको कितने बजे दिखाई देता है, सुबह 7, 7:30, 8 बजे, राइट, लेकिन उजाला कब हो जाता है 6 बजे, तो 6 बजे जो 6 से 7 का जो उजाला रहता है उसको आभास बोलते हैं, तो उससे हमको सूर्य का आभास हो जाता है। तो बोलते हैं सूर्य के आने की जरूरत नहीं है, सूर्य का आभास है ना उससे उजाला हो जाता है और चोर चक्के सब भाग जाते हैं और हमारा जो भय होता है वो हमारा दूर हो जाता है। तो बोलते हैं कि केवल नामाभास से मैंने देखा है सारे शास्त्रों में कि मुक्ति हो जाती है, और उसका साक्षी कौन है, श्री भगवत देता, श्री भगवत देता दे अजामिल साक्षी, बोले अजामिल उसका साक्षी है कि अजामिल ने अपने बेटे को बुलाया था, भगवान को नहीं बुलाया था, नारायण कहा था अपने बेटे का नाम, लेकिन और वैसे भी उसके बेटे का नाम नारायण नहीं था, मैं सुबह बता रहा था वो हिंकी पोंकी डोंकी ऐसा कुछ तो नाम रखा था उसने, लेकिन एक साधु आया उसके घर पे कुछ मांगने के लिए और फिर उसने नाम पूछा, बोला ये नाम अच्छा नहीं नारायण नाम रखो, तो साधु संघ हमेशा लाभ देता है वो हमारे को समझना चाहिए। तो नारायण का नाम लिया और वहां पर विष्णु दूत आ गए और यमदूतों को उन्होंने भगा दिया, बोला इस पर तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है, इसने नारायण का नाम लिया हम लोग लेके जाएंगे। और तब जाके और यमदूतों ने यमराज से बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ डिस्कशन हुआ उसके अंदर, लेकिन हरिदास ठाकुर बोलते हैं कि आप चिंता मत करो मैंने देखा है। और फिर चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा खुशी हुआ अंदर से, लेकिन डिस्कशन को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक और प्रश्न पूछा, उन्होंने बोला कि ठीक है हरिदास, इस दुनिया में खाली यवन लोग ही नहीं है, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जीव जंतु और स्थावर जंगम, इतने सारे लोग हैं, ट्री है, यू नो झाड़ है, पशु पक्षी जलचर प्राणी है, उन सब का क्या होगा। पृथ्वी थे बहु जीव स्थावर जंगम इहा सब की प्रकारे हुई मोचन, बोलते हैं कि इतने सारे स्थावर जंगम है की प्रकारे इहा सब ये सबका किस प्रकार से हुई भी मोचन, इन लोग का उद्धार कैसे होगा बताओ। हरिदास कहे प्रभु से कृपा तोमार, बोले अरे हे प्रभु आप चिंता क्यों करते हो, ये तो तुम्हारी कृपा है और इस तुम्हारी कृपा की वजह से ये सब कुछ इन सब का उद्धार हो जाएगा। हरिदास कहे प्रभु से कृपा तोमार स्थावर जंगम आगे करिया छे निस्तार, बोले कि आपने केवल आपकी कृपा मात्र से इन सबका उद्धार हो रहा है। तुम्ही जे करिया छे उच्च संकीर्तन, वो क्या बोले कि आपने ये जो संकीर्तन मूवमेंट चालू किया है, ये संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, जो उच्च स्वर में जो हरि का नाम हम लोग लेते हैं, तुम्ही ये करिया छे उच्च संकीर्तन स्थावर जंगम रे होई ते श्रवण, तो वो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्थावर जंगम जो लोग है कोई भगवान का नाम सुन रहे हैं, तो इसके लिए उच्च स्वर से भगवान का नाम लेना चाहिए। अभी कई लोग जो है हमारे से आर्ग्यूमेंट करते हैं कि आप इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हो, चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम क्यों लेते हो, शांति से नहीं ले सकते क्या, मन में ले सकते क्या, प्रॉब्लम है क्या तुम लोगों को। जैसे शिवास आंगन के अंदर जब कीर्तन होता था तो बाजू के वो पंडित लोग क्या बोलते थे कि इनको रात को भूख लगी है, खाने को नहीं है, और इसके लिए चिल्ला चिल्ला के हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं, है कि नहीं। तो एक बार मेरे को एक डिवोटी बता रहा था, किसी से जयदेव महाराज ने एक प्रश्न पूछा ये कि भाई तुम लोग इतना चिल्ला के क्यों जप करते हो, चिल्ला के कीर्तन क्यों करते हो, धीरे धीरे क्यों नहीं करते। तो जयदेव महाराज ने उनको जवाब दिया, उनको बोला देखो आप अगर जंगल में जा रहे हो, बहुत गहरा जंगल है, और उस जंगल में आप चलते हो, चलते चलते अचानक सामने शेर आ गया, ठीक है, तो आप क्या करोगे, ऐसा बोलोगे तो जल्दी भगवान का आकर्षण आएगा, जल्दी इंटेंशन आएगा, इसके लिए हम लोग चिल्ला के बोलते है कि नहीं। तो इसी प्रकार से उन्होंने बोला, तो कभी तो कहते हैं कि जो उच्च श्रवण आप कर रहे हैं और जोर से जो आप चिल्ला चिल्ला के हरि का नाम ले रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, सारे के सारे लोग सुन पा रहे हैं। तो खाली हम लोग नहीं, स्थावर जंगम सब, जैसे भी तुलसी का प्लांट है, ऐसे कुछ भी बहुत सारे जो जो झाड़ है उनको सुनाई देता है। तो वो क्या कहते हैं आगे, सुनिया जंगम संसारे रसय स्थावर से शब्द लागे प्रतिध्वनि होय। तो बोले आप जब ये संकीर्तन जाता है तो ये क्या होता है, आवाज टकराता है और टकरा के और वहां से वापस आता है, प्रतिध्वनि होती है, ऐसा लगता है कि वृक्ष जो है और जो बाकी दो दूसरे जो है वहां से प्रतिध्वनि हो रही है और हमको वहां से प्रतिध्वनि सुनाई देती है, एको जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, वो एको सुनाई देता है। लेकिन बाद में हरिदास ठाकुर बोलते हैं नहीं सॉरी सॉरी, ये बरोबर उपमा मैंने नहीं दिया, ये एको नहीं होता एक्चुअली, एक्चुअली क्या होता है, प्रतिध्वनि नाही सही करी ये कीर्तन। तो बोले कि प्रतिध्वनि नहीं हो रही है, वो खुद कीर्तन करने लगते हैं। तुम्हार कृपा रे अकथ्य कथन, के जो नॉन मूविंग आइटम है जो बोल भी नहीं सकती है, अरे वो भी बोलने लग जाता है कि नहीं। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हमंदे श्री गुरु दिन तारने परमानंद माधव। ओके, तो बताते कि जो गुंगा होता है वो भी बोलने लग जाता है, रंगड़ा भी जो होता है पर्वत पार कर लेता है, ये तुम्हारी कृपा का परिणाम है कि नहीं। तो बोलते हैं कि जो प्रतिध्वनि नहीं होती है वहां से क्या होता है, कीर्तन होता है और वृक्ष लोग भी कीर्तन करते हैं, और ये सब किस लिए हो रहा है, आपकी कृपा की वजह से हो रहा है। तो जैसे कि हरिदास ठाकुर कहना चाहते हो कि प्रभु आप सब कुछ जानते ही हो, सब कुछ आपकी कृपा से हो रहा है, काली आप मुझसे कहलवाना चाहते हो, तो आगे कहते हैं कि सकल जगत को उच्च संकीर्तन सुनिया प्रेम वैसे नाचे स्थावर जंगम। वो कहते हैं क्या हो रहा है कि आपका उच्च संकीर्तन करने की वजह से सुनिया प्रेम वैसे नाचे स्थावर जंगम, कि जो स्थावर और जंगम मूविंग और नॉन मूविंग सब आइटम क्या कर रहे हैं, सब लोग नाच रहे हैं। और इसका प्रमाण भी मेरे पास है, हरिदास बोलते हैं कि आप जो झारखंड में से जो जा रहे थे तब सारे के सारे जो प्राणी थे वो सब प्राणी कीर्तन करने लगे, और वो लोग क्या कर रहे थे, जैसे शेर और हिरण ये एक दूसरे के दुश्मन है, लेकिन दोनों क्या कर रहे थे, एक दूसरे को आलिंगन करके, एक दूसरे को किस करके और हाथ ऊपर करके जोर से चिल्ला रहे थे हरे
कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे।
तो सभी सभी नाच रहे थे। तो जैसे कृष्णा के रंग गोस्वामी एक और जगह पे गए थे कि चौदी के सब लोग बोले हरि हरि प्रेमावश मध्य नृत्य करेगा और हरि। बोले कि चौदह भुवन के अंदर केवल एक ही आवाज सुनाई दे रहा था, हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि हरि की आवाज, और क्या हो रहा था, श्री गौरांग महाप्रभु ऐसा डांस कर रहे थे, के हो नाचे के हो गाए श्री कृष्ण गोपाल प्रेमावश नृत्य करे स्त्री वृद्ध अबाल। बोले इतना प्रेम बस सब लोग कीर्तन कर रहे थे और पूरी दुनिया के अंदर बस कीर्तन हो रहा था और सब लोगों को देख देख के आश्चर्यचकित हो रहा था, चमत्कार हो रहा था कि क्या हो रहा है। जैसे कविराज गोस्वामी और एक जगह पे बोलते हैं कि प्रेमावश कैला बहुत गानन रतन देखी चमत्कार होइला सब लोके रमन। बोले सब लोगों को चमत्कार हो गया, सबका मन जो था वो आकर्षित हो गया श्री चैतन्य महाप्रभु को जो इस तरह से डांस कर रहे थे। और एक बार जब महाराज प्रताप रुद्र ने अपने महल की छत से इस प्रकार का कीर्तन होते हुए देखा तो महाराज प्रताप रुद्र खुद आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने कहा कि इस जगन्नाथपुरी के अंदर कई कलाकार लोग आते हैं और कई कलाकार आके भगवान जगन्नाथ को रिझाने की कोशिश करते हैं, अपना इंस्ट्रूमेंट ला के उनके सामने कीर्तन करते हैं और बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा दृश्य मैंने कहीं नहीं देखा। तो क्या कहते हैं, ऐसे नृत्य ऐसे प्रेम ऐसी हरि ध्वनि कहीं नहीं देखी यार कहीं नहीं सुनी। तो मैंने आज तक कहीं पे ऐसा देखा नहीं है, इतना प्रेम ऐसा नृत्य ऐसी हरि ध्वनि क्या कर रहे हैं लोग। तो भट्टाचार्य उनके गुरु बोलते हैं, भट्टाचार्य कहे प्रभु मधुर वचन चैतन्य सृष्टि एई प्रेम संकीर्तन। बोले हे प्रताप रुद्र महाराज, ये कोई ऑर्डिनरी चीज नहीं है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की रचना है, ये श्री चैतन्य महाप्रभु की सृष्टि है और ये प्रेम संकीर्तन है। ये संकीर्तन आंदोलन का उद्घाटन श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया और उसको आगे बढ़कर उसकी स्थापना श्रीला प्रभुपाद ने की, जो कल के दिन 50 साल पूरे हुए जहां पर श्री श्रीला प्रभुपाद ने इस इस्कॉन की स्थापना की। बोलो श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री गौरांग महाप्रभु की जय। तो आगे कहते हैं हरिदास ठाकुर, जगत निस्तार एई तुमार अवतार। तो बोले तुम्हारा अवतार ही हुआ इस जगत का उद्धार करने के लिए, भक्त भाव आगे ताटे कैला अंगीकार। तो कहे यू हैव कम टू डिलीवर ऑल द फॉलन सोल्स। तो क्या कहते हैं नरोत्तमदास ठाकुर, पतित पावन हेतु तव अवतार। तो वो बोलते हैं कि पतित का उद्धार करने के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है और उच्च संकीर्तनता है करिला प्रचार स्थिर चर जीव सबे खंडलीला संसार। अर्थ करने के प्लान क्या है, तो बोले कि जो उच्च संकीर्तन कर रहे हो उससे आप प्रचार कर रहे हो, तो प्रचार ही सार है हमारे को। और श्रीला प्रभुपाद जी ने यह आदेश दिया है, बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स एंड प्रीचिंग इज द एसेंस। तो चैतन्य महाप्रभु ने भी आदेश दिया है, क्या आदेश दिया है, अमर आज्ञा है गुरु होए तारो ए देश जारे राखो तारे करो कृष्ण उपदेश। तो सब समझा जाके घर घर के अंदर और हर जगह हमको क्या करना है, कृष्ण का उपदेश करना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को बुला के उनसे कहा था, क्या कहा था, सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास अमर आज्ञा है जाओ करी हो प्रकाश, पति घर घर जाओ करो विद्या बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। तो बोला कि जाओ घर घर के अंदर जाके लोगों को ये बताओ, क्या बताओ, कि कृष्ण तुम्हारे माता है, कृष्ण तुम्हारे पिता है, कृष्ण तुम्हारे प्राण धन है, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण का नाम भजो, कृष्ण की आराधना करो। क्यों, और यही भगवान ने भगवद गीता में कहा है, मन मना भवमन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, के भाई आप मेरे भक्त बनो, मेरा भजन करो, मेरा कीर्तन करो और इस तरह से आप मेरे पास आ जाओगे। सर्व धर्मान परित्यज माम एकम शरणम रज अहम तव सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो आप आरती शुरू कर सकते, मैं खत्म करूंगा। तो वो आगे कहते हैं कि तुम्हारा ये लीला महा अमृत सिंधु मोर मोर मन गोचर रहे नाही तारा एक बिंदु। बोले ये इतना बड़ा समुंदर के अंदर से मैं खाली दो चार बूंद निकाल के आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो आप मेरे मुंह से बुला रहे हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु का आश्चर्य होता है, वो आगे कहते हैं कि एक तो सुनि प्रभुर मने चमत्कार होइला मोर गूढ़ लीला हरिदास के मोने जानिला। तो बोले हरिदास को मेरी गूढ़ लीला के बारे में कैसे पता चला, मने रसंतोष तारे कैला लिंगन बाह्य प्रकाशित से सब करिला वर्जन। बोले चैतन्य महाप्रभु को अंदर से बहुत खुशी हुई लेकिन बाहर से उन्होंने हरिदास ठाकुर को आलिंगन करके और बोले मैं अब जाता हूँ तो हरिदास और भी कुछ बोलता रहेगा। तो इस प्रकार से हरिदास ठाकुर श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में बहुत कुछ बता रहे थे और कृष्णदास कविराज गोस्वामी हरिदास ठाकुर के बारे में बताते हुए कई बातें कहते हैं और वो कहते हैं कि हरिदास गुण गान
असंख्य अपार, केहो कोने हमसे वर्णे नहीं पाए पार। बोले कि हरिदास ठाकुर के इतने सारे गुण है, इतनी क्वालिटीज है जिसको हम लोग गिन नहीं सकते हैं, और उसमें से हम लोग क्या बता पाएंगे, एक खाली बूंद कुछ बता पाएंगे, उसका कोई पार नहीं है। सब कहे ना जाए हरिदास र चरित्र, केहो किछु कहे करिते अपार पवित्र। तो बोला कि मेरी कोई कैपेसिटी नहीं है कि मैं हरिदास ठाकुर का पूरा चरित्र बता सकूं। तो जैसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, वैसे हमारे भी हालत है कि हम लोग भी कुछ बता नहीं सकते हरिनाम या हरिदास ठाकुर जी या प्रभुपाद के बारे में या चैतन्य महाप्रभु के बारे में। और हमेशा ऐसा होता है कि हमारे पास लिमिटेड समय होता है, लिमिटेड टाइम होता है, तो हमारा टाइम अभी हो गया है, अभी आरती करनी है। तो मैं आगे इसको और न बढ़ाते हुए यहीं पे इसको विराम दूंगा, लेकिन उसके बाद हरिदास ठाकुर के बारे में और वर्णन आता है कि किस प्रकार से हरिदास ठाकुर बेनापुर में जाके रहे, वहां पर उन्होंने उस वैश्य का उद्धार किया, रामचंद्र खान जो उनके पास भेजा था, और उसके बाद वहां से आगे निकल के वे अद्वैत आचार्य के घर गए, और अद्वैत आचार्य के घर पे जाके और उनके साथ वो भगवान कृष्ण के बारे में और गौरांग महाप्रभु के बारे में बातें करते थे। और जो श्राद्ध का पहला जो निवाला होता था वो अद्वैत आचार्य हरिदास ठाकुर को देते थे। और इस प्रकार से फिर आगे बहुत और वर्णन बताते रहते हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। तो कभी आगे समय मिलेगा तो बताने की कोशिश करेंगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि समय की सीमा है इसके लिए हम यहीं पे विराम देंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इसको इतना अच्छी तरह से सुना, और इसको बताने में मुझसे अगर कोई त्रुटि हो गई है तो मैं उसके लिए आप लोगों से माफी चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद की, जय हरिदास ठाकुर की, गौरांग महाप्रभु की, जय गौर प्रेमानंद की।
हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो प्रभु जी ने इतना अच्छा से बारे में हम सीमा